पंचदशी के कुटस्थ दीप प्रकरण का 55 श्लोक। एवं च सति बंध स्यात् पर रुकना पड़ेगा ना। एवं च सति बंध स्यात् कस्येत्यादि कुतर्कया विडम्बना दृढं खण्ड्यः खण्डनोक्ति प्रकारतः एवं च सति बन्ध स्यात् कस्येत्यादि कुतर्कजः विडम्बना दृढं खण्ड्यः खण्डनोक्ति प्रकारतः एवं च सति बन्ध स्यात्। जो पूर्व का प्रसंग है कि बुद्धि क्या है, आभास क्या है, आत्मा क्या है, यहां जगत क्या है, इसके निर्णय न होने से, निर्णय शास्त्र में तो है पर हमें निर्णय नहीं है, तो निश्चित विचार न होने के कारण से मोह हो रहा, मोह, और मोह का ही नाम संसार है। तो बुद्ध्यादि के स्वरूप को जो विवेचन करके समझ लेता वह तत्व ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, ऐसा वेदांत का निश्चय है। अब इसके बाद बता रहे एवं बंध मोक्षयो अविवेक मूलत्वे सति अद्वैतवादे कस्य बंध कस्य वा मोक्षः इत्येवम् आदि रूपः तार्किकैः क्रियमाणः कुतर्कमूलः परिहास विशेषः खण्डनोक्त युक्तिभिः तेषां निरुत्तरत्व आपादनेन परिहरणीया इत्याह। बंध मोक्ष ये दोनों अज्ञान मूलक है, अविवेक मूलक है। यह बात सिद्ध हो जाने के बाद अद्वैतवाद, आपका अद्वैतवाद मतलब केवलाद्वैतवाद, इस केवलाद्वैतवाद में किसको बंध किसको मोक्ष, सीधी बात, जब एक ही आत्मा है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, एक ही आत्मा है। जब एक मेवा द्वितीय ब्रह्मी ब्रह्म आत्मा या आत्मा दूसरी कोई चीज नहीं, जब दूसरा कोई चीज नहीं तो किसको बंधन और किसको मोक्ष, कौन उपदेश करेगा, कौन उपदेश सुनेगा, ये शंका ठीक है ना। बिल्कुल शंका सही है और बात भी सही, जब सब अद्वैत है तो न अशांति न शांति, न तकरार है न शांति करना, जब अद्वैत ही आत्मा ही तो है, एक खटपट होता है द्वैत में। तो पूर्व पक्ष का शंका बिल्कुल आपका है, सही शंका, जब एक अद्वैत ही है तो फिर ये जो खटपट है, खटपट नहीं होना चाहिए, बंधन नहीं होना चाहिए, फिर मोक्ष भी नहीं होगा, जब अद्वैती एक है तो कह रहे अद्वैतवादे सति किसको बंधन और फिर किसका मोक्ष होगा। इतेवम आदि रूप, आदि रूप सब सब लेना अपनी तरफ से, जो भी कुछ है सब लेना आप। तार्किक ही क्रियमाणा, तार्किक लोग ये जो शंका करते हैं, कुतर्क मूला, ये कुतर्क मूल है, कुतर्क जानते ना कि सफेद गाय का सफेद दूध बिल्कुल, तो फला जगह काली गाय का बिल्कुल काला दूध होना चाहिए, ब्लैक दूध होना चाहिए, ये तर्क तो सही है अपनी जगह, परंतु कुतर्क हो गया ना भाई, चाहे गाय काली हो चाहे लाल हो चाहे चितकबरी हो, दूध तो बिल्कुल वैसा ही होगा, सफेद होगा। ऐसा नहीं कि काली का सफेद का सफेद तो काली का काला लाल का लाल होता है ऐसा कभी कभी नहीं होता। तो वही बोले कुतर्क जो कर रहे हैं, कुतर्क में क्या होता एक किसी अंश को पकड़ लेते हैं उसी अंश को पकड़ के मतलब कि सर्वांगीण विचार नहीं करते इस कुतर्क में एक अंश को पकड़ के फिर उसमें जो है ना तर्क वितर्क कुतर्क। तो खंड अनोक्त मल्ले खंडन खंड खाद्य दूसरी हर्ष कृत है इस युक्ति के द्वारा उनका उनको निरुत्तर करना चाहिए उत्तर देना चाहिए। इसी बात को 55 श्लोक से बता रहे एवं च सदी कार्तवा सब अद्वैत होने के कारण से बंध स्यात् कस्य बंधन किसको होगा फिर मोक्ष किसको होगा। ऐसा जो कुतर्क है विडंबना ये जो कुतर्क की विडंबना है मतलब परिहास यह खंडन खंड खाद्य आदि युक्तियों से तर्क से इन सब का खंडन कर देना चाहिए। खंडन खंड खाद्य ऐसा ग्रंथ है। खंडन खंड खाद्य का मतलब होता है कि खंडनमेव खंड मतलब कि जो गुड़ का बनता है ना एक मिष्ठान विशेष ले लो अपने समझने के लिए जिस गन्ने से गुड़ नहीं बन पाता है उसी गन्ने से पका करके एक खांड बनता है इनमें खांड बोलते हैं बहुत ठंडा गुड़ गर्म होता है और खांड ठंडी होती है दोनों में बहुत अंतर है। गुड़ का स्वभाव गर्म उष्ण और खांड का स्वभाव है ठंडा तो गर्मी के दिन में उसको पानी मिला के पीते हैं तो पेट ठंडा होता। तो कहते खंडन ही जिसका खांड के समान मधुर मिठास है खाद्य मतलब वही भोज्य है उसका नाम खंडन खंड खाद्य ग्रंथ का नाम है। बस सब कुछ खंडन करना निराकरण करना और सब कुछ खंडित हो जाएगा तो अखंड आत्मा बचेगी सीधी बात। सारे प्रपंच का श्रुति युक्ति के द्वारा खंडन जब हो जाएगा बाद हो जाएगा तो परिशेषात एकमेव अद्वितीय अखंड जो खंड का अवशेष अधिष्ठान है जो खंडन का वह अखंड तत्व बचेगा। वही बता रहे कि खंडन खंड खाद्य की प्रक्रिया से उनको जवाब देना चाहिए कि भाई किसको बंधन किसको मोक्ष होता है एवं श्रुति युक्तिभ्याम कुटस्थम बुद्ध्यादिभ्यो विविच्य दर्शयित्वा पुराणेष्वपि तद विवेकः कृतः इत्याह। ग्रंथकार कितने ईमानदार हैं आजकल के लोग होते हैं ना बात तो कहीं से लेकर बोलेंगे पर उसका नाम नहीं बोलेंगे बोले मैं कह रहा मेरा अनुभव मेरा रिसर्च मेरा खोज है बोलते कि नहीं। पर देखो हमारे ग्रंथ का ऐसा नहीं साफ बोल दिए उनका नाम लेगी खंडन खंड खाद्य जो है श्री हर्ष कवि उनके रीति से खंडन करना ये समझो कि ईमानदारी है। आगे देखिए एवं श्रुति युक्ति व्याम कुटस्थम बुद्ध्यादिभ्यो विविच्य श्रुति के द्वारा और युक्ति के द्वारा कुटस्थम बुद्ध्यादिभ्यो विविच्य दर्शित्वा कुटस्थ आत्मा को बुद्धि मन प्राण शरीर प्रपंच से विविच्य कार्थवा अलग करके दिखला करके पुराणेष्वपी कहते पुराण में भी वही तत्व है वही विवेचन है इस बात यहां पर दिखलाया जा रहा है। पुराणेष्वपि पुराण में भी पुराण पुराण मतलब होता है पूरापि नव इदानीमपि नव हमेशा वह नवीन रहता है। परमात्मा का विशेषण है पुराण पुरुष ये पुराण सब गीता में आया ना परमात्मा के लिए पुराण पुरुष है मतलब कभी पुराना होता ही नहीं वो पूरा पिनव इदानी पिनव अब भी जब आप कथा सुनते पुराण की तो बिल्कुल नया नया लगता है। श्रीमद भागवत महापुराण की कथा चाहे कितनी भी सुन लो, जब भी कथा होती तो उसमें लगता है कि बिल्कुल नया है, बिल्कुल नूतन, क्योंकि परमात्मा कभी पुराना होता ही नहीं। ये जो अनात्मा है ना संसार, ये संसार कभी भी नूतन हो नहीं सकता, ये तो जीर्ण शीर्ण, वो लेकर मेटल को बना दिया, थोड़ा पॉलिश कर दिया, बढ़िया से चमचम चमकने लग गया, चीज तो वही है। जैसे कंपनी वाले करते हैं ना, पुराने चीज को उठाते हैं, फैक्ट्री में डालते हैं, गलाते हैं, और गलाने के बाद नया रूप दे देते, ऐसा ये पुराण नहीं। पुराण तो बिल्कुल हमेशा नित्य शाश्वत। पुराण है नित्य शाश्वत। तो पुराण में भी दिखला रहे हैं, पुराण सभी तब विवेक का अर्थ हुआ बुद्धियादि से विवेक करके दिखलाया गया है। वृत्ते साक्षी तया वृत्ति प्राग भावस्य च स्थितः बहुत्सायं तथा ज्योस्मि इत्याभास ज्ञान वस्तुनः वृत्ते साक्षी तया वृत्ति प्राग भावस्य च स्थितः बहुत्सायं तथा ज्योस्मि इत्याभास ज्ञान वस्तुनः। अब विवेक करके बतला रहे हैं अच्छी तरह से कि वह जो शिव तत्व क्या है, परमात्मा क्या, उसको समझा रहे हैं। बंधन और मोक्ष को बतला दिया पहले ही। ये बंधन कैसे हो रहा है? अज्ञान से। सबका मूल अज्ञान है। अज्ञान क्या है कि हमने अनात्मा को आत्मा मान लिया। जिस प्रकार किसी मकान में हम रहते हैं बचपन से जवानी बुढ़ापे तक, तो मकान के मालिक तो हैं, उसका देख रेख करते, साफ सफाई करते, सजाते, संवारते, सब करते, करना भी चाहिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, कैसा बिल्कुल ये गंवार आदमी बोलेंगे ना। परंतु मकान हम हो नहीं जाते, हम अलग होते, मकान अलग। ऐसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये हमारे लिए मकान के समान है। हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित, अहंकार नहीं है, बल्कि इनकी से अलग, इनके साक्षी कुतस्थ हैं। जैसे आपके बिना कोई मकान का अस्तित्व नहीं है। किराएदार को क्या मतलब है, मकान चाहे टूटे फूटे गिरे, पर मालिक को पूरा ख्याल रहता है। एक भी दीमक दिखाई दिया ना तो मालिक तो बेचैन हो जाएगा, और वह रहने वाले किराएदार कोई मतलब ही नहीं, चाहे 100 दीमक घूमे आए, क्यों उसको मतलब नहीं, रहने से मतलब है, किराया देने से मतलब होता है ना। ये अंतर होता है मालिक में, किराएदार में। ऐसे यहां पर आपको शरीर का ठीक से ध्यान रखना, इसलिए शास्त्रों में कहा है योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्राणजलि प्रणतोस्मि हम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगाभ्यास के द्वारा चित्त को, मन को वश में करना चाहिए। मन का, प्राण का और वीरी का बिल्कुल एक संबंध है। तीनों में से एक को पकड़ लो ना तो दो तो अपने आप काबू में हो जाते हैं। बड़ा भारी विज्ञान है ये। तीनों बिल्कुल एक तरह, मन, प्राण और वीर्य, बिल्कुल तीनों का सीधा संबंध है। चाहे जैसे भी हो, तीनों में से एक पर काबू कर लो तो मन बस में हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा मन को बस में कर लिया तो दोनों बस में हो जाएंगे, या विचार करते करते धीरे धीरे हमने अपने चित्त को शांत कर लिया तो भी प्राण शांत हो जाएगा। तो योगाभ्यास के द्वारा चित्त जो हमारा विक्षिप्त है ना, विषय में जो भाग रहा बाएं दाएं, आप 25 वर्ष से सत्संग सुन रहे हैं कि भाई ये संसार अनात्मा है, असार है, फिर भी मदिराम उधर ही भाग रहा, लाख प्रयास करते फिर भी ये आपकी बात नहीं मानता। तो कहा कि ऐसा करना योगाभ्यास प्राणायाम के द्वारा, विचार के द्वारा इस मन को बस में करने का, पदेन वाचा, अब बोलना चाहिए शुद्ध मंत्र तो ये वाणी लड़खड़ा जाती है। तो क्या बोला कि पदेन वाचा, इस वाणी को शुद्ध करना है। पद नाम व्याकरण का है, पद बोलते व्याकरण। कल के परसों बताया था ना कि महात्माओं का ये उपाधि है पद वाक्य प्रमाण पारावारिण। पद बोलते व्याकरण, वाक्य बोलते मीमांसा, प्रमाण शब्द का अर्थ न्याय दर्शन। तो जो व्याकरण मीमांसा न्याय में पारंगत हो उसको बोलते पद वाक्य प्रमाण पारावारिण श्रुति ब्रह्मनिष्ठ। तो पद मतलब व्याकरण से अपनी वाणी को शुद्ध करने का शुद्धोच्चारण। शुद्धोच्चारण की बहुत महिमा है, आप चाहे कितना भी इंग्लिश फर्राटेदार बोल लो उसका कोई फल नहीं। हाँ, थोड़ा तो फल है, ऐसा बात नहीं फल नहीं है, यहां सम्मान मिलेगा, लोग बोलेंगे बड़ा आदमी पढ़ा लिखा है, इतना तो बोलेंगे, परंतु लोक परलोक में जरा भी कोई महत्व नहीं। भाई कितना भी अच्छा अंग्रेजी जानता हो, जब माता पिता का संस्कार करेगा तो वहां क्या बोलेगा, फायदा स्वाहा बोलेगा, वहां गणेश स्वाहा बोलना पड़ेगा, पावकाय स्वाहा नहीं बोल सकते, अनलाय स्वाहा नहीं बोल सकते, अग्नि बोलेंगे ना। हालांकि अग्नि शब्द के पर्यायवाची ही पावक है, अनल है, फायर, सब पर्यायवाची शब्द हैं, फिर भी नहीं बोलते हैं। तो आपके संस्कृत शब्द के सुनने का, मनन का और बोलने का बड़ा महत्व है। स्वयं महाभाष्यकार ने इस बात को महाभाष्य बतलाई। महाभाष्यकार कौन पता है ना? हाँ, पतंजलि को बोलते महाभाष्यकार। उन्होंने कहा है एक शब्द सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवति। भाष्यकार, भाष्यकार है वो महाभाष्यकार, क्योंकि व्याकरण के ऊपर जो भाषण बहुत बृहत कलेवर है, इसलिए का महाभाष्य। हाँ, व्याकरण के ऊपर पाणिनीय जो सूत्र है उस सूत्रों के ऊपर जो व्याख्या है उसका नाम महाभाष्य, बहुत बृहत है, इसलिए कहते हैं महाभाष्य। नहीं, चार नहीं है, अष्टाध्यायी, आठ अध्याय हैं, एक अध्याय में चार पाद है तो अच्छा के कितने हो गए 32, इतने पाद हो गए 32 पाद, आठ अध्याय है कुल मिला के 32 पाद हो गए, लगभग 4,500 के आसपास सूत्र है इतने वक्त। हाँ, सब 14 से आया, उसी को बोलते हैं महाभाष्य, व्याकरण के ऊपर है। तो महाभाष्यकार बोलते कि एक शब्द सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख बहुति। शंकर भाष्य, हाँ पाणिनि पहले लिखे, हाँ पाणिनि पहले लिखे ना, बहुत पहले हो गए, पहले हाँ ऐसे यहां पर ऐसे समझने का। तो आप लोग बहुत शब्दों को शुद्ध उच्चारण करते हैं तो आपकी कुर्सी स्वर्ग में आरक्षित है। हाँ, आपकी मर्जी, जाओ ना जाओ दूसरे को दे दो दूसरी बात है, कोई यदि आपकी सेवा करे ना, बहु बेटा नाती पोता आस पास पड़ोसी, तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि उपनिषद में है कि तस्य दायात् गच्छन्ति, मतलब कि वो जो ज्ञानी है उस ज्ञानी का पाप पुण्य तो उसके साथ जाता नहीं, तो कहते तस द्विसंत पाप कृत्यम पापम, द्वेष करने वाले पाप लेते हैं, साधु कृत्यम जो सज्जन लोग हैं अच्छे पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं। तो जो आपकी सेवा करेगा उसको वह आप दे चारा दे अपना मिल जाएगा, और जो द्वेष करेगा आपसे उसे क्या मिलेगा। और जो चल रहे हैं पैर से कीड़ी मर गई है ना, चीटी मर गई, तो थोड़ा बहुत पाप तो होता है, है? स्वाभाविक मिल जाएगा, वो सेवा करेगा तब मिलेगा सेवा। हाँ दोनों बातें दोनों बातें हैं। चलो जी आगे देखिए, तो संस्कृत की बहुत महिमा है भाई। सुंदर अगरबत्ती जलाई जाए, अब बच्चे को अगरबत्ती का ज्ञान हो या ना हो फिर भी खुशबू तो मिलेगा ही। ऐसे ही चाहे भले समझ में न आए आपको, पर वेदक ध्वनि को सुनने से, और ये शास्त्र भी कैसे छंदोवत सूत्राणि भवंती, वेद के समान या आपके व्याकरण के सूत्र, वैशेषिक दर्शन के सूत्र और ब्रह्म सूत्र ये वेद के समान ही है। इनका श्रवण करने से आपको वेद श्रवण का पुण्य मिल जाता है। ऐसा पुण्य आपको आपके भाषा या अंग्रेजी से नहीं मिलेगा, कहीं लिखा किसी ने है? अंग्रेजी सुनेंगे सुबह सुबह खूब अच्छी तरह से। हाँ उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट मतलब हाँ उच्छिष्ट भाषा झूठ, उच्छिष्ट नहीं मलेच्छ भाषा बोल, मलेच्छ उच्छिष्ट तो हिंदी हो गई, हिंदी उच्छिष्ट कह सकते हैं, हाँ मलेच्छ भाषा कह सकते। मलेच्छ मतलब है कि जहां कोई शुद्धिकरण का विचार नहीं उसको मलेच्छ कहते हैं, मतलब शास्त्रीय ज्ञान शून्य देश को बोलते मलेच्छ देश। जब शास्त्रीय वैदिक ज्ञान से शून्य हो उसको मलेच्छ देश कहते हैं। अब तो वैदिक है शास्त्रीय है उससे इतर लोग के लिए कहा गया है। अच्छा वृत्ति साक्षितया वृत्ति, अब ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा कठिन, ज्यादा कठिन तो नहीं है। प्रागभाव शब्द आया, प्रागभाव बोलते हैं कार्य के पूर्व अवस्था को प्रागभाव बोलते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं आपके लिए कि आपके अंदर घर जाने का प्रागभाव है, कि आपके अंदर बैठा भी घर जाने का प्रागभाव, मतलब घर जाने वाले हैं। जैसे मिट्टी पड़ी है तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी में घट का प्रागभाव है। उत्पद्यमान का जो अभाव होता है उसको तार्किक भाषा में प्राग भाव कहा जाता है, है कुछ नहीं। अब मिट्टी है, घड़ा बनने वाला है तो क्या बोलेंगे, घट में मिट्टी का प्राग भाव। आप घर जाने वाले तो क्या बोलेंगे, आपका जो है ना घर जाने का प्राग भाव है। ऐसे ही जो वृत्ति का साक्षी हो और वृत्ति के प्राग भाव रूप से स्थित हो, मतलब वृत्ति की पहले स्थित है, इसका मतलब हुआ वृत्ति के प्राग भाव रूप से स्थित है, मतलब वृत्ति का जो प्रकाशक है, वृत्ति के जो पहले है। घटाकार पट्टाकार मठाकार जो वृत्तियां बन रही है उन वृत्तियों का साक्षी भी है और उसके पहले मौजूद है, बाद में नहीं पहले से मौजूद है। इसलिए बोल दिया कि वृत्ति प्राग भाव रूप से स्थित है, वृत्ति के पहले मौजूद है। जैसे आंख खुली हमारी यहां से, देखो आंख बंद है, आंख खुली, आंख खुलने के बाद हमने रूप देखा तो रूप का साक्षी वही है, रूप का साक्षी है मतलब प्रकाशक है। और वृत्ति जो उदित हुई उसके पहले भी मौजूद है, ये जो रूपाकार वृत्ति बनी ना, रूपाकार वृत्ति बनी, हरा रूप है, नीला है, सुंदर है, सांवला है, गोरा है, इस रूपी वृत्ति के पहले भी मौजूद है। वह वृत्ति का प्रकाशक भी है और वृत्ति के पहले से मौजूद है, इसी पहले को प्रागभाव कह दिया बस। हाँ हाँ उसके पहले से मौजूद है, है बनेगी, तो उसके पहले से मौजूद है वो। हाँ, घट के आकार में तो बाद में होगा, पर पहले से वो मौजूद है आकार में। वो तो वृत्ति है, घटाकार पटाकार डंडाकार जैसी वृत्ति हो वैसा होगा। हाँ, अब ये कि आपके अंतःकरण में जैसा संस्कार होगा वैसा मोह आकर्षण लोभ होगा, आपके ऊपर निर्भर है। जैसे भगवान सूर्य सबको बराबर रूप से प्रकाश दे रहे हैं, समान रूप से वर्षा हो रही है, एक ही मिट्टी है, पर पृथ्वी में जैसा बीज होता है, लौकी का बीज तो लौकी की सब्जी होगी, परवल तो परवल होगा, नींबू का बीज है उसी रोशनी से नींबू का खट्टा खट्टा फल होगा, और आम का बीज है तो आम का मीठा फल होगा। एक ही सूर्य की रोशनी, एक ही जल, एक ही पृथ्वी है, ऐसे ही चैतन्य में कोई फर्क नहीं है, एक बराबर। हमारे अंतःकरण में जैसी वृत्ति होती है ना, वैसा ही तद अनुसार उसका परिणाम और फल होता है। इसलिए कहते कि बढ़िया वृत्ति बनाओ। फिर साधन भजन चिंतन सत्संग का मतलब कि हमारी अच्छी वृत्ति बने। अच्छी कैसी? भगवताकार वृत्ति। जब भगवताकार वृत्ति बनेगी तो आनंद आएगा, और जगताकार वृत्ति बनेगी तो चाहे कुछ भी करो दुख होगा। आप बैठे मंदिर में, अच्छी जगह बैठे, भगवान के सामने बैठे, है ना, पर वहां पर यदि आपकी जगताकार वृत्ति है, भगत लोग तो आ रहे हैं कि भगवान जी हैं, उन्हें बड़ा आनंद हो रहा दर्शन करके, परमा जो बैठे हैं पंडित पुरोहित, उनकी वृत्ति कैसी? जगताकार, मतलब रुपयाकार, पैसाकार, धनाकार। तो नारायण ऐसा क्या होता नहीं, संसार है। यदि हमारी वृत्ति जगताकार है तो चाहे कहीं भी रहे आपको दुख ही होगा, समस्या आएगी। हाँ, वही बता रहे हैं, वृत्ति के पहले भी है और वृत्ति का प्रकाशक है, दो बार बता रहे हैं। वृत्ति के पहले भी चैतन्य है और वृत्ति का प्रकाशक भी है। तो प्राग भाव बोलते हैं कार्य उत्पन्न होने की पूर्व अवस्था। सीधी बात, जैसे मिट्टी में घट कार्य होना है तो घट कार्य जो होना है उसके पूर्व अवस्था को बोलेंगे प्राग भाव। अब हुआ नहीं, होने वाला है, तो आपके वृत्ति का प्रकाशक भी है और वृत्ति के पूर्व में स्थित भी है, तो उसी को हम बोलते हैं आश्रय। वृत्ति का आश्रय भी है और वृत्ति का प्रकाशक भी है, दोनों वह चेतन है। वही लिखा कि वृत्ति का साक्षी भी है और वृत्ति का प्राग भाव रूप से स्थित है। ऐसी भूतसायाम, भूतसा बोलते हैं कि ज्ञान की इच्छा होने पर, तथा अज्ञोस्मी, मैं अज्ञानी हूं। आप बोलते हैं ना, अज्ञान के होने में प्रमाण है। हम क्या बोलते हैं? मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी हो मतलब कि अज्ञान के होने में वाक्य प्रमाण है कि अज्ञोस्मी, मैं अज्ञानी हूं। तो मैं जो है ना, मैं ही उस अज्ञान का आश्रय हो गया। ऐसा नहीं बोलते कि घट अज्ञानी है, पट अज्ञानी है, हम बोलते मैं अज्ञानी हूं। अपने को बोलते ना, मैं नहीं जानता भाई, उसी को हिंदी में बोलते कि मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं, इसको बोलते हम मैं अज्ञोस्मी। तो मतलब अज्ञोस्मी का अर्थ हुआ अज्ञ, मतलब ज्ञान, अज्ञान का आश्रय भी मैं हो गया, साक्षी हो गया, चेतन हो गया, उसका प्रकाशक भी है। दोनों बात हो गई, अज्ञान का आश्रय भी, प्रकाशक भी। वही बता रहे अज्ञोस्मी इति आभास ज्ञान वस्तुनः। आभास ज्ञान का वह जो है ना आश्रय है, वस्तु है। देखिए स्पष्टीकरण किया है व्याख्या टीकाकार ने, आभास बोलते चिदाभास। हाँ, अज्ञोस्मिति आभास ज्ञान, मतलब जो भी संसार का प्रातिभासिक ज्ञान है उन वस्तुओं का वह साक्षी है, वही आभास का भी चिदाभास ना, चिदाभास। तो चिदाभास का भी अधिष्ठान व चैतन्य है, जैसे घटाकाश मठाकाश जो परिच्छिन्न आकाश है उन सब का आश्रय महाकाश है, ऐसी आभास ज्ञान का वही चेतन आश्रय है। इस सब कुछ शिव तत्व को मतलब ब्रह्म को समझाने के लिए तीन श्लोक पुराण का प्रमाण दिया है। घटा लीजिए है क्या चीज, हाँ लिखना शिव पुराण के है, ये तीन श्लोक जो है ना ये शिव पुराण का है, नीचे लिखा है तीनों श्लोक शिव पुराण का है, है? हाँ टिप्पणी में लिखा है ना, दो नंबर टिप्पणी देखना, लिखा है शिव पुराणस्थम इदम श्लोक त्रयम, तीन श्लोक। तो आगे देखिए, कामादि वृत्ति उत्पत्तो सत्यम तत्साक्षित्वेन वृत्ति उदयात पूर्वम तत्प्राग भाव साक्षित्वेन जिज्ञासायां सत्यम तत्साक्षित्वेन ततः पूर्वम अज्ञोस्मि इति अनुभूयमान अज्ञान साक्षित्वेन च शिव एव तिष्ठति। पूरा स्पष्ट कर दिया श्लोक के हृदय को, स्पष्ट कर दिया टीकाकार ने। कामाद वृत्ति उत्पत्तो सत्याम, हमारे मन में कोई कामना हो गई, संकल्प इच्छा हो गई, तो उस कामना क्रोध लोभ मोह वृत्ति की उत्पत्ति उत्पन्न होने पर तत्साक्षित्व उसका साक्षी है। जैसे मान लीजिए आप शांति से बैठे हैं तो दूसरे को तो क्या लगता, क्या बिल्कुल शांत बैठे भगवान का नाम ले रहे माला घुमा रहे दूसरे को लग रहा, पर आपको पता है कि हमारा जो मन है इसमें मनीराम कहां गया हुआ है, तो आप उसके साक्षी हो गए ना। दूसरे को नहीं पता है पर आप शांति से बैठे हैं माला घुमा रहे हैं, परंतु जो हमारा मन है उसमें मन कहां गया है ये अपने को मालूम पड़ता है, तो आप उसके साक्षी हो गए। तत्साक्षित्वेन वृत्ति उदयात पूर्वम, वृत्ति उदय के पहले से मौजूद है। तत्भाव तत्प्राग भाव साक्षित्वेन जिज्ञासायां, वृत्ति के प्राग भाव का साक्षी है, ऐसी जिज्ञासा होने पर सत्यमल होने पर तत्साक्षित्वेन ततः पूर्वम उसके साक्षी रूप से उसके पहले अज्ञोस्मि मैं अज्ञानी हूं, इस प्रकार से अनुभूयमान अज्ञान साक्षित्वेन या व्यवहार का आपको अनुभव प्रमाण दिया साक्षीपने में कि आप क्या कहते कि मैं अज्ञानी हूं, तो मैं अज्ञानी हूं ऐसा कथन ही ऐसा वाक्य ही प्रमाण है कि आप मतलब मैं साक्षी है अज्ञान का भी। अज्ञोस्मि अज्ञान मतलब मैं अज्ञानी हूं, मतलब मैं जो है ना साक्षी अज्ञान का प्रकाशक है। सामान्य रूप से आपको यह ज्ञान है कि मैं जानता नहीं, मुझे पता नहीं है, पर विशेष रूप से ज्ञान नहीं है कि भाई किस चीज का मुझे अज्ञान है। अज्ञोस्मि अज्ञोस्मि में सामान्य अज्ञान है, विशेष का नहीं। जैसे आप बोलते हैं मुझे पुस्तक का ज्ञान नहीं, ये विशेष हो गया, पुस्तक विषय हाँ नाम मिली हमने विशेष हो गया। अज्ञोस्मि इतन भूयमान अज्ञान साक्षित्वेन च शिव एव तिष्ठति, वही शिव मतलब चैतन्य शिव पुराण में शिव को शिव कहा है, और यही बात वेदांत में ब्रह्म शब्द से कहते हैं वह बता रहे शिव ही है तद रूप से। असत्यालंबनत्वेन सत्य सर्व जडस्य तु साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः असत्यालंबनत्वेन सत्य सर्व जडस्य तु साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः। असत्यालंबनत्वेन, असत्य जो संसार है इसका भी आलंबन वही चैतन्य है। अंधकार का भी आश्रय वही चेतन है और प्रकाश का भी आश्रय वही चेतन। जिस प्रकार से समझने के लिए एक रुई कपास है, अब उस कपास का सूर्य की रोशनी उसी प्रकाश से हम लोग कपास को देखते सूर्य की रोशनी के द्वारा, तो आश्रय भी हो गया। और वही जब विशेष ग्लास से विशिष्ट हो जाएगी रोशनी तो जलाकर राख कर देगी। इसी का नाम वृत्ति विशिष्ट चैतन्य। जो वृत्ति है उस वृत्तियारूढ़ जो चैतन्य है, हाँ वृत्ति मतलब कांच मान लो, तो कांच से विशिष्ट रोशनी उस रोई को जला देती है। ऐसे हमारे अंतःकरण में जो वृत्ति है उस वृत्तियारूढ़ जो चैतन्य होगा, जिसको बोलते ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्तियारूढ़ चेतन वाक्य अविद्या अज्ञान को ध्वंस कर देता है। तो सामान्य रूप से वही चैतन्य सबका आश्रय है, पर वही चेतन जब वृत्ति से विशिष्ट बन जाएगा ना तो अविद्या का ध्वंस कर देगा। तो अभी सामान्य रूप से सबको उसका अनुभव है, ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद हूं, आत्मा हूं आनंद, ऐसा तो अनुभव है, परंतु विशेष रूप से नहीं है, मतलब आत्मत्वेन नहीं है, मैं ही हूं। जब आत्मत्वेन होगा तब जाकर अज्ञान का बाध होगा। वही बता रहे असत्यालंबनत्वेन, सत्य जड़ से दो सारे जड़ प्रपंच का वो सत्य है, आश्रय है। साधकत्वेन चिद्रूप, साधक होने से वह चिद्रूप है और परम प्रेमास्पद होने से वह क्या है, आनंद रूप है। ये सब अनुमान है, देखो घटा लो नीचे। सच असत्यस्य जगतः आलंबनत्वेन अधिष्ठानत्वेन सत्य, एक हो गया अनुमान यहां तक। समल आत्मा, हाँ, स का अर्थ आत्मा, जो आत्मा है असत्य जगत का आलंबन होने से अधिष्ठान होने से आत्मा सत्य है, क्योंकि नियम है बिना अधिष्ठान के भ्रम होता नहीं। जब तक रज्जु नहीं होगा, रस्सी नहीं, तब तक सांप की भ्रांति नहीं होगी। तो असत जगत का वह आलंबन है इसलिए सत्य है। देखिए स हो गया पक्ष, सत्यत्व हो गया साध्य, और हेतु क्या हो गया आपका कि असत आलंबनत्वेन सत्व की सिद्धि हो गई, अनुमान से सिद्ध किया। थोड़ा बात तो वही है, और जो आत्मा है सत्य, क्यों सत्य है कि असत जगत का आलंबन होने से। जडस्य सर्वस्य साधकत्वेन अभासकत्व चिद्रूप, चिद्रूप क्यों है, आत्मा चिद्रूप, आत्मा बनाना पक्ष, आत्मा चिद्रूप है। क्यों चिद्रूप है, क्योंकि जड जगत का प्रकाशक होने से। यदि चेतन रूप आत्मा नहीं होगा तो इसका प्रकाशन कौन करेगा, प्रकाशन नहीं बन पाएगा। तो प्रकाशक होने से चिद्रूप आत्मा है। सर्वदा प्रेम विषयत्वात् आनंद रूप, वह आत्मा आनंद रूप है। क्यों आनंद रूप है, कि सभी के प्रेम का आस्पद है, आश्रय है। तो आश्रय होने से आत्मा आनंद स्वरूप है। इस संसार में आनंद नहीं, संसार तो आपका कैसा है, दुख रूप, दुख रूप का शक्ति या दुख सुख का प्रतिबिंब है, संसार में सुख का प्रतिबिंब है। सत चित आनंद आत्मा का निज स्वरूप है, हाँ, अपना स्वरूप है। और जगत में सत्ता की, चैतन्यता की, आनंद की प्रतीति मात्र है। जिस प्रकार जल को खूब गर्म कर दिया हमने, जल को चाहे कितना भी गर्म कर दो, उबाल दो, पर जो जल का असली स्वरूप है ना, वो ठंडा हो ही जाएगा, धीरे 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 ठंडा हो जाएगा। तो उष्मता तो अग्नि का स्वभाव है, ऐसे ही यह जो जगत है ना, जल के समान जड़ रूप है, इसमें आनंद नहीं है। सचित आनंद तो यह आत्मा के कारण से प्रतिभासित हो रहा है। वह लिखा कि सर्वदा प्रेम विषयत्वात् आनंद रूप आत्मा आनंद स्वरूप है। आगे पूरा अनुमान ही अनुमान है, पूरा अनुमान है, कल आपको पूरा लग जाएगा अनुमान में, अच्छा अनुमान। तो न्याय तो पढ़ चुके हैं आप लोग, तर्क संग्रह, जो तर्क संग्रह पढ़े होंगे तो बहुत आराम से अनुमान लग जाएगा। अनुमान में दो बात का ध्यान रखना, एक होना चाहिए पक्ष धर्मता सही सही, दूसरा व्याप्ति ज्ञान। दो ही अनुमान के समझो पाद है, पैर है चलने के, पक्ष धर्मता और व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान सही है और पक्ष धर्मता है तो अनुमान सही है। पक्ष धर्मता बोलते हैं कि पक्ष में हेतु का रहना, और व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं साहचर्य नियम, साथ साथ रहे, साथ साथ न रहे। जैसे जहां धूम वहां अग्नि पर्वत पर महानस में, और जहां अग्नि का भाव वहां धूम का भाव, जैसे जलाशय, तो व्याप्ति ज्ञान हो गया। और धूम रहता है पर्वत में तो बोलेंगे पक्ष धर्मता। तो पक्ष धर्मता और व्याप्ति ज्ञान यदि मिल गए तो समझो अनुमान आपका सही है। इसी तरीका से कल आपको घटाएंगे, थोड़ा आज बता दिया आप लोगों को, शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।